नमस्कार भारत, 12 जून दिन मंगलवार, मैं हूं कुलदीप मिश्र। सिंगापुर में ट्रंप और किम की ऐतिहासिक मुलाकात आज, उत्साह, उम्मीदें और आशंकाएं।
The two leaders are seeking to break out of the dangerous cycle that created so much concern last year.
इस मुलाकात में क्या हो सकती है चीन की भूमिका?
चीन जो है वो समझता है कि उसकी सियासी और मिलिट्री इंटरेस्ट जो पैसिफिक रीजन में है, एशियन रीजन्स में है, वो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कहीं थ्रेटन ना हो, तो वो मैनेज कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के रिलेशनशिप को।
और बात उस हिंदू परिवार की जिसने संजो कर रखी हैं कुरान की अनूठी प्रतियां।
हमारे पास हिंदू धर्म का कलेक्शन भी है, मुस्लिम धर्म का कलेक्शन भी है, सिख धर्म का कलेक्शन भी है, तो हमारे लिए सारी मुकद्दस चीजें हैं।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, भूमिका राय से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन आज सिंगापुर में मुलाकात करेंगे। बीते 18 महीनों में दोनों नेताओं में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है, ऐसे में ये मुलाकात काफी अहम है। अमेरिका को उम्मीद है कि इससे उस प्रक्रिया को शुरू करने में मदद मिलेगी जिसके नतीजे में उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों का अपना कार्यक्रम बंद कर देगा। वहीं उत्तर कोरिया के लिए ये दुनिया से जुड़ने का एक सुनहरा मौका है। दोनों नेताओं की मुलाकात पर दक्षिण कोरियाई संसद में डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सदस्य प्यो चांग वोन ने कहा कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों को छोड़ने में असहज महसूस नहीं करेगा क्योंकि इसके बदले उसे सुरक्षा का आश्वासन दिया जाएगा। प्यो चांग वोन ने कहा कि
The first step will be the declaration of the end of war, the end of Korean war.
पहला कदम युद्ध समाप्ति की घोषणा होगा और दूसरा कदम अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच शांति संधि। तीसरा चरण अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच आधिकारिक राजनयिक संबंध स्थापित करना होगा। इसके बाद ही उत्तर कोरिया सोचेगा कि अब वह पूरी तरह से सुरक्षित है। प्यो चांग वोन के शब्द। अब से कुछ ही देर में दोनों नेताओं की वार्ता शुरू होने वाली है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कल दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया। लंबे समय से बीमार चल रहे पूर्व प्रधानमंत्री को रूटीन चेकअप के लिए भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेता कल उनसे मिलने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां करीब 50 मिनट तक रुके भी। अप्रवासियों से भरे एक जहाज को इटली और माल्टा में प्रवेश न दिए जाने के बाद स्पेन ने उन्हें अपने यहाँ जगह देने का विचार कर लिया है। इटली की नई सरकार के धुर दक्षिणपंथी कहे जाने वाले गृह मंत्री मातियो सल्विनी ने इसे अपनी पहली जीत बताया है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि कहीं नहीं लिखा है कि सारे अप्रवासियों को इटली ही आना चाहिए। इस जहाज में 600 से ज्यादा लोग हैं जिन्हें पिछले सप्ताह लीबिया के तट से बचाया गया था। वहीं माल्टा और इटली के बीच विवाद के चलते जहाज ने अपना इंजन बंद कर दिया था, जिससे अब इस बात की आशंका पैदा हो गई है कि क्या जहाज इतने ईंधन में स्पेन तक पहुंच पाएगा। जहाज पर सवार एक मेडिकल चैरिटी संस्था के लॉरेन किंग ने कहा कि
For MSF, we're concerned about the health and safety of the rescued people on board. We have 629 people on board. Our capacity.
हम लोगों की सुरक्षा और सेहत को लेकर फिक्रमंद हैं। हमारे साथ 629 लोग हैं, जबकि हमारी क्षमता 550 लोगों की ही है। ऐसे में ये बहुत ही असुरक्षित हो सकता है। लॉरेन किंग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में फर्जी ईमेल भेजकर पैसे लूटने के आरोप में 5 देशों से 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए ये शख्स लोगों को फर्जी मेल किया करते थे और उनसे पैसे वसूलते थे। पैसे लूटने के लिए ये लोग कभी बिजनेस पार्टनर बनकर मेल करते थे तो कभी साथ काम करने वाले बनकर। वायर वायर के साथ मिलकर FBI ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। FBI का कहना है कि पिछले 6 महीनों में इन अपराधियों के खाते में लगभग 108 करोड़ रुपये ट्रांसफर हुए हैं। नाइजीरिया से 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा, मॉरिशस और पोलैंड से अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जर्मन सरकार ने देश में 2,38,000 मर्सिडीज बेंज मॉडल कारों को वापस लेने का आदेश दिया है क्योंकि इनमें एक ऐसा चिट डिवाइस लगाया गया था जिससे प्रदूषण का स्तर कम पता चलता है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल एप्लीकेशन और फेसबुक पर भी लाइव, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। अब से चंद मिनटों बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन आमने सामने बैठकर शांति स्थापित करने के मकसद से बातचीत करेंगे। ये मुलाकात सिंगापुर में हो रही है। दोनों नेता अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की तय जगह पर पहुंच चुके हैं। अब तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है जब पद पर रहते हुए किसी अमरीकी राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता से मुलाकात की हो। ब्यौरा सुनिए नवीन नेगी से।
उत्तर कोरिया की मशहूर टीवी एंकर री चुन ही इस तरह किम जोंग उन के सिंगापुर में स्वागत की खबर उत्साह से बता रही हैं। इस मुलाकात को लेकर उत्साह और उम्मीदें भी हैं और आशंकाएं भी। किम जोंग उन से मुलाकात से ठीक पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है जिसमें खुद ट्रंप की आशंकाओं की झलक मिलती है। ट्रंप ने लिखा है कि स्टाफ के सदस्यों और प्रतिनिधियों के बीच सब कुछ बहुत अच्छा रहा, लेकिन ये बहुत मायने नहीं रखता। बहुत जल्द ये पता चल जाएगा कि इस मुलाकात में कोई असल समझौता हो पाता है या नहीं। हालांकि दुनिया में बहुत लोग ये चाहते हैं कि 18 महीने पहले तक एक दूसरे को हमले की धमकी दे रहे देश साथ मिलकर शांति स्थापित करने की ओर बढ़ें। इसीलिए कल जब किम जोंग उन सिंगापुर घूम रहे थे तो वहां लोगों ने उन्हें देखकर जबरदस्त उत्साह दिखाया। किम ने भी सिंगापुर वासियों को निराश नहीं किया और मुस्कुराकर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मुलाकात को शांति कायम करने का एक और मौका मान रहे हैं। वहीं दुनिया से अलग थलग रहने वाले उत्तर कोरिया के लिए यह दुनिया से जुड़ने का एक सुनहरा मौका है। इस मुलाकात में परमाणु कार्यक्रमों पर बात होनी तय है। अमरीका को उम्मीद है कि इससे उस प्रक्रिया को शुरू करने में मदद मिलेगी जिसके नतीजे में उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों का अपना कार्यक्रम बंद कर देगा। वहीं उत्तर कोरिया का कहना है कि वह परमाणु कार्यक्रम बंद करने को तो तैयार है, लेकिन ये सब कैसे होगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट नहीं है कि उत्तर कोरिया ऐसा करने के एवज में क्या मांग रखेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने दोनों नेताओं की मुलाकात को एक सार्थक पहल बताते हुए कहा, दोनों ही नेता पिछले साल उपजे तनाव को दूर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दोनों का ही मकसद शांति स्थापित करना होना चाहिए। जैसा कि मैं पिछले महीने ही दोनों नेताओं को खत लिखकर बोल चुका हूं कि यह रास्ता आपसी सहयोग, त्याग और एक उद्देश्य की मांग करता है। जाहिर है इसमें कई तरह के उतार चढ़ाव होंगे, असहमतियाँ होंगी और कठिन समझौते होंगे। ये थे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दोनों नेताओं की इस मुलाकात को संभावनाओं से भरा हुआ बताया है। पोम्पियो ने कहा,
President is fully prepared for the meeting tomorrow. I have personally had the opportunity to make sure that he's had a chance to hear lots of.
राष्ट्रपति ट्रंप इस मुलाकात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम चाहते हैं कि कल होने वाली मुलाकात का सार्थक परिणाम सामने आए जो दोनों देशों के हित में हो। यह बिल्कुल नई तरह की कोशिश है। ये थे अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के शब्द। किम के संदर्भ में जानकारों का कहना है कि अब वो अपना ध्यान देश की अर्थव्यवस्था पर लगा रहे हैं और चाहते हैं कि उनके देश पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए जाएं, उत्तर कोरिया में अंतर्राष्ट्रीय निवेश हो, और ये मुलाकात इस लिहाज से भी काफी अहम है। सबसे अहम सवाल यही कि क्या यह बातचीत उस तनाव को कम करने में कामयाब होगी जो उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों और परमाणु कार्यक्रम से पनपा था, जिसने एक समय समूची दुनिया को अपनी जद में ले लिया था।
नवीन नेगी से ब्यौरा सुन रहे थे आप। अभी चंद लम्हे पहले दोनों नेताओं ने पहली बार मुलाकात की है। उनके हाथ मिलाने की तस्वीरें टेलीविज़न पर प्रसारित की जा रही हैं। अब सीधे सिंगापुर चलते हैं जहां हमारे संवाददाता ज़ुबैर अहमद मौजूद हैं। ज़ुबैर, क्या ताज़ा जानकारी आपके पास?
जैसा कि आपने बताया कि दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया है, ये कुछ क्षण पहले हुआ और बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था, बहुत ही ऐतिहासिक समय था जब दोनों देशों के नेताओं ने हाथ मिलाए और उसके बाद अभी जाकर वो बैठे हैं और थोड़ी सी बातचीत कर रहे हुई। अभी समिट शुरू होने में कुछ समय है। कुछ फोटोग्राफर्स के लिए और कैमरामैन के लिए उन्होंने पोज किया है और यूं ही इस तरह से बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप थोड़े से टेंस जरूर दिख रहे हैं, लेकिन चेयरमैन किम थोड़े ज्यादा रिलैक्स नजर आ रहे हैं। मैं ये समझता था कि उनका खत काफी छोटा होगा राष्ट्रपति ट्रंप से, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो 6 फिट 3 इंच के, लेकिन मुझे अब सामने जब खड़े हुए दोनों तो ऐसा लगता है कि इतने इतने कद भी उनका इतना छोटा नहीं है। हाँ, ये है कि जब समिट खत्म हो जाएगा और कामयाब रहेगा तो दोनों का कद एक बार फिर से काफी ऊंचा होगा।
जी, और हमें याद है कि जब अप्रैल में किम जोंग उन की दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जेइन से मुलाकात हुई थी, जिसे इस मुलाकात का सेमीफाइनल जानकार कह रहे थे, तो उस समय भी दोनों की शारीरिक भाषा को लेकर बड़ी व्याख्याएं की गई थी, तो आज भी शायद वो किया जाए। तो दोनों ही स्थितियों में, चाहे ये मुलाकात सकारात्मक रहे या नकारात्मक रहे, भारत के संदर्भ में या भारत के लिए क्या इस मुलाकात की कोई अहमियत हो सकती है?
भारत के लिए जरूर होगी, जब ये सम्मेलन कामयाब रहा, जब भी हो इसमें कामयाबी आए और समझौता हो जाए, एक पीस ट्रीटी दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में हो जाए और परमाणु मुक्त नॉर्थ कोरिया बन जाए, उसके बाद जब अर्थव्यवस्था को दोबारा से सुधार करने की जरूरत पड़ेगी, उस समय काफी देशों की कंपनियां वहाँ, उनको काम मिलेगा और निवेश करने का अवसर मिलेगा उसमें
जी।
हमें ये यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि भारत की कंपनियों को भी काफी अच्छा अवसर मिलेगा, और हमारे जो जूनियर विदेश मंत्री वो थोड़े समय पहले वहाँ गए भी थे और वहाँ पर मैदान जो है उन्होंने साफ किया है, बातचीत की है वहाँ के लोगों से। तो मैं बिल्कुल इस बात को समझ रहा हूँ कि भारत की नजर है अभी उत्तर कोरिया पे, और जैसे ही इकोनॉमी खुलेगी तो भारत भी वहां पर जरूर होगा।
बहुत शुक्रिया जुबैर अहमद, हमसे जुड़े थे सीधे सिंगापुर से। अमेरिका और उत्तर कोरिया के नेता मिल रहे हैं, लेकिन इस वजह से चर्चा चीन की भी हो रही है। उत्तर कोरिया से चीन के अच्छे संबंध जग जाहिर हैं, ऐसे में इस बैठक में चीन की क्या भूमिका है, यही पूछा बीबीसी उर्दू के संवाददाता शफी नकी जामई ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ और बाथ स्पा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर इफ्तिखार मलिक से।
मेरे ख्याल में चीन जो है उसके अब ग्लोबल इंटरेस्ट हैं, रीजनल इंटरेस्ट हैं, ये वो चाइना नहीं है जो माओ ज़ेडुंग के जमाने में आइसोलेटेड था, चाइना वॉल के सिंड्रोम को फॉलो करता था। तो मेरे ख्याल में उस हवाले से चीन जो है वो समझता है कि उसके मौशी, सियासी और मिलिट्री इंटरेस्ट जो पैसिफिक रीजन में है, एशियन रीजन्स में है, वो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कहीं थ्रेटन ना हो, तो वो मैनेज कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के रिलेशनशिप को। ना ही वो अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात खराब करना चाहते हैं और ना ही वो टोटली नॉर्थ कोरिया को अबैंडन करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में उनकी कोशिश चाइना की यही है कि इन दोनों के दरमियान निगोशिएशंस हो और काफी हद तक जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको किसी सूरत हाल में कम किया जा सके। तो ये दोनों कंट्रीज के मफाद में है, और मेरे ख्याल में नॉर्थ कोरिया में भी काफी हद तक चेंज आ चुकी है, जो समझते हैं नई लीडरशिप के ठीक है बम्बास्टिक स्टेटमेंट्स के बावजूद नॉर्थ कोरिया के अंदर जो इंडस्ट्रियल और मौशी मसाइल हैं उनका हल भी मेरे ख्याल में साइंटिफिक डेवलपमेंट में और अमन में है। तो मेरे ख्याल में एक किस्म की रियलाइजेशन खासतौर पे चाइना में और नॉर्थ कोरिया में है, और मेरे ख्याल में अमरीका भी यही समझता है कि कन्फ्रंटेशन से कोई खास फायदा नहीं होगा।
मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि क्या जजीरनुमा कोरिया में अमेरिका की फौजी मौजूदगी, खुसन कुछ अरसे पहले थार्ड मिसाइल के नस्ब किए जाने के बाद, चीन के लिए कितनी बड़ी परेशानी का सबब है?
चाइना की रिलेशनशिप अमेरिका से काफी हद तक चेंज हो रही है, और उसमें लगता यही है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो काफी रोल अदा कर रही है, क्योंकि अमेरिका के भी चाइना में इंटरेस्ट है और चाइना की भी जो इकोनॉमिक जो ट्रेड रिलेशनशिप है वेस्ट यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ वो काफी गहरी हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है ये इंजीनियर कर रहे हैं, ये मोटिवेट कर रहे हैं कि मिलिट्री ऑप्शन से हट के सियासी तौर पे किसी किस्म की मफाहमत निकाली जाए। तो जहां अमेरिका अपने मिसाइल जो है वो साउथ कोरिया में या मुख्तलिफ आइलैंड्स पे नस्ब कर चुका है, तो चाइना भी इसी तरीके से आपने देखा है कि मुख्तलिफ आइलैंड्स पे अपने स्ट्रेटेजिक और टेक्टिकल वेपन्स को एस्टेब्लिश कर रहा है। तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ से एक किस्म की क्विड प्रो को जिसे आप कहते हैं, यानी ये मिलिट्री कंपटीशन भी जारी है, सियासी कंपटीशन भी जारी है, और साथ साथ इकोनॉमिक कोलैबोरेशन जो है और जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो भी उसी तरीके से स्ट्रांग हो रही है।
1953 में जब कोरिया की जंग जारी थी, चीन के फौजी शुमाली कोरिया में जाकर लड़े थे, उस वक्त के चीन और 7 दहाइयों के बाद के चीन में तो बहुत फर्क है ना सर। तो क्या चीन इस बार किसी ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए कोशिश कर रहा है?
बिल्कुल, चाइना में बहुत रेडिकल चेंज आई है, अमेरिका की भी, और आपको पता है कि 70s में अमेरिका और चाइना, बरतानिया और चाइना की डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुई है, और उसके बाद रिलेशनशिप डिटेरियरेट नहीं हुई है। और आपको पता है कि 70s में वियतनाम वॉर जो है वो भी खत्म हुई, जो कि वो भी एक इरिटेंट था। कोरिया के अलावा वियतनाम का जो इशू था वो भी अमेरिका और चीन के दरमियान इरिटेंट था। तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक तब्दीली आ चुकी है और इस वक्त चाइना के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं अमेरिका में, यूरोप में, पैसिफिक रीजन में, वो बहुत फैल चुके हैं और मेरे ख्याल में चाइना नहीं चाहता कि किसी किस्म की एक्टिव मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो, खा वो नॉर्थ कोरिया के हवाले से हो या खा वो डायरेक्टली हो या खा वो जापान के हवाले से हो। तो मेरे ख्याल में ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं ये ड्राइविंग फोर्स हैं और चाइना भी तो एक किस्म की कैपिटलिस्ट फोर्स बन चुका है, अगरचे कि वहाँ वन पार्टी और वन आइडियोलॉजी सिस्टम है लेकिन उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो तो सारा कैपिटलिस्ट है।
ये थे प्रोफेसर इफ्तिखार मलिक। अब वक्त है दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा का। भूमिका राय मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बताएं भूमिका क्या खास है आज के अखबार में।
कुलदीप, सबसे बड़ी खबर तो आज डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के जो सर्वोच्च नेता हैं उनकी मुलाकात, हाँ उनकी मुलाकात की खबर को ही सारे अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। और ये हिंदुस्तान टाइम्स ने एक बहुत ही क्या बोलूँ एक आकर्षक हेडिंग दी है जिसमें लिखा है कि अमेरिका जो है वो नॉर्थ कोरिया को एक यूनिक डील दे सकता है। ठीक है, और ऐसा माना भी जा रहा है कि कई मामलों में ये जो दोनों नेताओं की जो मुलाकात है खास रहेगी और इसमें परमाणु निरस्त्रीकरण पे मुख्य शायद इसको फोकस करके इस पे बात होगी दोनों नेताओं के बीच। और उत्तर कोरिया के लिए भी एक बहुत बेहतर मौका है क्योंकि वो जनरली दुनिया से कटा रहता है तो दुनिया के संपर्क में आने का उसके लिए एक मौका है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये दिल्ली की एक खबर है जिसमें अरविंद केजरीवाल जो हैं वो एलजी ऑफिस में अपने अन्य नेताओं के साथ धरना देकर के बैठे हुए हैं जिसमें मनीष सिसोदिया हैं, सत्येंद्र जैन।
मैं तस्वीर देख पा रहा हूं कि वो अतिथि कक्ष है, वेटिंग रूम है उस एलजी हाउस का और उसके सोफे पर अरविंद केजरीवाल लेटे हुए हैं, साथ में आम आदमी पार्टी के और नेता लेटे हुए हैं और ये धरना दे रहे हैं पूर्ण राज्य
की मांग को लेकर के। और इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स से जुड़ी एक बड़ी खबर है जिसमें यह है कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज का जो कट ऑफ आया है उसमें जो कट ऑफ है वो बढ़ा है और अगर बात करें तो इस बार जो कट ऑफ है वो 98.75% है जो कि पिछले साल की तुलना में बढ़ा है। और एक बहुत ही अहम खबर, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सोमवार के दिन एम्स में भर्ती कराया गया, दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता उनसे मिलने पहुंचे जिसमें राहुल गांधी भी थे और अमित शाह भी थे उसमें शामिल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां करीब 50 मिनट भी बिताए।
दैनिक जागरण ने इसी खबर में लिखा है क्योंकि उन्हें क्या ये एक रूटीन चेकअप था या इससे ज़्यादा कुछ था, इसको लेकर के अलग अलग मीडिया के हलकों में अलग अलग दावे किए गए हैं। दैनिक जागरण ने इस संबंध में लिखा है कि उन्हें सांस और किडनी में परेशानी के कारण भर्ती कराना पड़ा है। 93 वर्षीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं
जी। और इसी के साथ एक ये भी बात कही जा रही थी कि उन्हें शायद यूरिन इन्फेक्शन है लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई थी, आधिकारिक तौर पर यही कहा गया कि ये एक रूटीन चेकअप है और जिसके तहत उनको एम्स के डायरेक्टर की निगरानी में अस्पताल में रखा गया।
एक खबर और नवभारत टाइम्स में भी है और दैनिक जागरण में भी है, वो है कि शनिधाम के दाती महाराज पर शिष्या से बलात्कार का आरोप लगा है। बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए भूमिका राय।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक हिंदू परिवार ने कई पीढ़ियों से कुरान की कुछ प्राचीन प्रतियों को सुरक्षित रखा हुआ है। इस हिंदू परिवार के पास कुरान की प्राचीन प्रतियों के अलावा इस्लामी कैलीग्राफी के कुछ अनूठे नमूने भी हैं। इन नमूनों को उन्होंने पहली बार श्रीनगर की एक नुमाइश में पेश किया। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट सुनिए।
जम्मू शहर के रहने वाले सुरेश अबराल के परिवार के पास करीब 5000 हस्तलेख और 250 कैलीग्राफीज हैं जो कई सारे धर्मों की हैं। ये हस्तलेख बीते 100 वर्षों से उनके पास हैं, जिन्हें उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने पास सुरक्षित करके रखा है। कश्मीर में पहली बार सुरेश अबराल ने 2 ऐसे कुरानी हस्तलेख नुमाइश के लिए रखे थे जो एक ही कागज और कपड़े पर लिखे गए हैं जो कुरान के मुकम्मल नुस्खे हैं। इसके अलावा 45 इस्लामी कैलीग्राफीज भी अबराल ने यहाँ नुमाइश के लिए रखी थीं। वो कहते हैं,
जो हमने होली कुरान के 2 नुस्खे लाए हुए हैं और कैलीग्राफी में हमने वेलम पे नुस्खे लाए हैं और एक हमने यहाँ पे शजरा लाया हुआ है जिसमें हमारे सारे प्रोफेट्स के नाम हैं।
दरअसल ओबराल के दादा लाला राम ओबराल महाराजा हरि सिंह की ज्वेलरी विंग को देखते थे और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इन सभी नुस्खों को अपने पास सुरक्षित करके रखा था।
ये हमारी इस टाइम जो है वो तीसरी पीढ़ी चल रही है। तो सबसे पहले तो हमारे जो दादाजी थे वो महाराजा हरि सिंह जी का जो ज्वेलरी का जितना भी विंग था वो उसको लुक आफ्टर करते थे। उन्होंने ही स्लोली स्लोली जैसे वो ज्वेलरी का विंग देखते थे तो उन्होंने ज्वेलरी इकट्ठी करना शुरू कर दी। स्लोली स्लोली उन्होंने कॉइन्स इकट्ठे किए, फिर उन्होंने कुछ नुस्खे इकट्ठे करना शुरू कर दिए और आज की डेट में हमारे पास 5,000 के करीब करीब नुस्खे हैं।
हरि सिंह जम्मू कश्मीर के आखिरी महाराजा थे जिनका वारिश 1961 में निधन हो गया था। ओबराल और उनके तीन भाइयों ने घर के एक हिस्से को म्यूजियम में तब्दील करके रखा है जिसका नाम शाश्वत आर्ट गैलरी रखा गया है। जिन दो कुरानी हस्तलेखों को ओबराल ने श्रीनगर में नुमाइश में पेश किया था उन्हें पढ़ने या देखने के लिए 10 या 20 एक्सेस का लेंस इस्तेमाल करना पड़ता है। हालांकि ओबराल को इस बात की जानकारी नहीं है कि कुरान का यह हस्तलेख कितना पुराना है।
हम यही कह सकते हैं कि 90-100 साल से तो ये हमारी फैमिली के पास है, तो इससे ज़्यादा ना कभी किसी ने हमें ज़्यादा गाइड करने की कोशिश करी ना ही हमने इसके डीप में इतने जाने की कोशिश करी।
जो दो कुरानी हस्तलेख आज नुमाइश के लिए ओबराल ने रखे थे उनमें से एक हस्तलेख कागज पर लिखा गया है जो 1 फीट चौड़ा और 5 फीट लंबा है और दूसरा नुस्खा कपड़े पर लिखा गया है वो 4.5 फीट लंबा है और 5.5 फीट चौड़ा है। ओबराल कहते हैं कि जिस तरह उनके लिए अपने धर्म के हस्तलेख पवित्र हैं वैसे ही दूसरे धर्म के भी हस्तलेख उनके लिए पवित्र हैं।
हमारे पास हिंदू धर्म का कलेक्शन भी है, मुस्लिम धर्म का कलेक्शन भी है, सिख धर्म का कलेक्शन भी है, तो हमारे लिए सारी मुकद्दस चीज़ें हैं और पाक हैं।
इस नुमाइश का आयोजन जम्मू कश्मीर सरकार के आर्काइव्स एंड म्यूजियम विभाग ने किया था। ओबराल के हस्तलेख के अलावा इस नुमाइश में कई सारे नायाब कुरानी हस्तलेखों और कैलीग्राफीज को भी नुमाइश में पेश किया गया था। इस नुमाइश का नाम शीरीं कलाम रखा गया था। कला से मोहब्बत रखने वाले लोग इस नुमाइश को बड़े शौक से देखने के लिए पहुंचे। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
आपको बता दें कि ट्रंप और किम ने सिंगापुर के कैपेला होटल में थोड़ी देर पहले हाथ मिलाया। वे गले तो नहीं मिले लेकिन एक दूसरे की पीठ पर हाथ जरूर रखा। अब वो होटल के पुस्तकालय में एक दूसरे से दो दुभाषियों की मदद से बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। गुड़गांव में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर हुए विवाद के कुछ महीनों बाद यहीं के सेक्टर 27 में एक साझा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया जिसमें कई धर्मों के लोग शामिल हुए। भूमिका राय की रिपोर्ट।
मस्जिद किसने बनाया है? मस्जिद किसने बनाया है? जय श्री राम।
कुछ दिन पहले गुड़गांव के पार्क में नमाज पढ़ रहे लोगों को परेशान करने के लिए कुछ कट्टर हिंदूवादी युवाओं ने उत्तेजक नारेबाजी की थी। ये आवाजें उसी वीडियो से हैं जिसके वायरल होने के बाद से गुड़गांव में अल्पसंख्यक मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। अब रमजान के महीने में अंतर धार्मिक रोजा इफ्तार का आयोजन कर इन सवालों का जवाब देने की कोशिश की गई है। गुड़गांव के सेक्टर 27 के कम्युनिटी सेंटर में मुसलमानों के लिए रोजा इफ्तार के आयोजकों में शामिल राहुल रॉय कहते हैं,
1.5 महीने से गुड़गांव में एक टेंशन था जुम्मे नमाज की डिस्टर्बेंस को लेकर। तो जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो उस वक्त हम लोगों ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें अलग अलग तबके के लोग आए गुड़गांव के, और इसके ऊपर सोचा गया कि किस तरह से गुड़गांव में अमन और शांति बनाए रखी जा सकती है, और हम नहीं चाहते थे कि इस शहर में दंगे हों। कई चीज़ें हम लोगों ने सोची हैं करने की, उसमें से एक ये इफ्तार थी।
वहीं जमीयत उलेमा हिंद के मोहम्मद सलीम कहते हैं कि ऐसे आयोजनों से आपसी मोहब्बत बढ़ती है।
इस तरह के इफ्तार पार्टी से और आपसी प्रोग्राम से जो है मोहब्बत बढ़ती है। और जो गुड़गांव के अंदर नमाज को लेकर के जो मामला पेश आया तो मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहूँगा कि खराबी और कमी हर किसी के अंदर है, किसी मजहब के अंदर नहीं है, इंसानों के अंदर कमी है। तो अगर 2-4 इंसानों के अंदर कमी है उसकी वजह से किसी भी मजहब को हम गलत नहीं कह सकते।
इफ्तार में शामिल रही सॉफ्टवेयर इंजीनियर नीलोफर का कहना था कि सांप्रदायिक तनाव करवा कर वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है।
आजकल की जो प्रॉब्लम्स को साइड करके सिर्फ जो हाईलाइट हो रहा है वो कम्युनल टेंशन है अपने पार्टीज का इंटरनल फायदा करने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस कंट्री की हालत खराब हो रही है।
प्रोफेसर ठकराल पहले इस अवतार में आने को लेकर सहज नहीं थे, लेकिन यहाँ आकर उन्हें आपसी नफरत कम करने का संदेश मिला।
मुझे पहला ऐसा लगा कि शायद ये मुस्लिम का ही कोई फंक्शन है जहाँ हमें बुलाया जा रहा है, तो पता नहीं किस तरह का होगा, ऐसा ना हो कि कोई रिलीजियस रंगत के अंदर दूसरों के विरुद्ध कोई बात ना की जाए। तो आई वाज रिलक्टेंट जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन फिर मेरे दोस्तों ने थोड़ा क्लियर किया कि ये एक साझा मंच है और एकता का मंच है।
इस इफ्तार में शामिल रहे अलग अलग धर्मों के लोगों ने अपने आप को एक दूसरे के पहले से अधिक करीब महसूस किया।
कोई उरूज दे ना जवाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह में डाल।
भूमिका राय, BBC, दिल्ली।
ना मेरी मिसाल दे।
अब वक्त है खेल समाचारों का।
खेल समाचार इंदु पांडे से। 5 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम स्पेन पहुंच चुकी है और आज यानी कि 12 जून को मैड्रिड में उनका पहला मैच होगा। इस सीरीज को अगले महीने लंदन में होने वाले महिला विश्व कप से पूर्व भारतीय टीम के लिए बहुत ही अहम अभ्यास माना जा रहा है। भारतीय स्ट्राइकर रानी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में आराम के बाद टीम में उन्होंने वापसी की है। टीम की कमान रानी के हाथों में सौंपी गई है और वैसे भी देखा जाए तो 8 साल बाद विश्व कप खेल रहा है भारत और सभी के लिए ये एक बहुत ही बड़ा मौका है और कईयों के लिए पहला अनुभव भी है। ओलंपिक्स की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक और कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन विनेश फोगाट इंडोनेशिया में होने वाले आगामी एशियन गेम्स में भारतीय महिला टीम की अगुवाई करेंगी। भारतीय कुश्ती संघ ने एशियन गेम्स के लिए रविवार को लखनऊ में 6 सदस्यीय भारतीय महिला कुश्ती टीम की घोषणा की। सेबेस्टियन वेटल ने कनाडा ग्रांड प्री में लुइस हैमिल्टन के दबदबे को खत्म करते हुए करियर की 50वीं फार्मूला 1 जीत दर्ज की और इसके साथ ही ड्राइवर्स चैंपियनशिप में शीर्ष पर पहुंच गए। फेरारी के 4 बार के चैंपियन वेटल ने करियर में 54वीं बार पोल पोजीशन से शुरुआत की थी। मर्सिडीज के फिनलैंड के ड्राइवर वाल्टेरी बोटांस दूसरे जबकि नीदरलैंड के रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वेरस्टापेन तीसरे स्थान पर हैं। और जल्दी ही फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है जिसमें कि ब्राजील की टीम 6ठी बार फुटबॉल विश्व कप जीतने के लक्ष्य के साथ रूस पहुंच चुकी है और ऑस्ट्रिया की टीम विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रही। बॉल टेम्परिंग के चलते साल भर के लिए क्रिकेट के मैदान से बाहर रहने को मजबूर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेविड वार्नर कुछ ही दिनों में एक नई जिम्मेदारी के साथ क्रिकेट में वापसी करने वाले हैं, लेकिन बतौर खिलाड़ी नहीं बल्कि कमेंटेटर के रूप में। इंग्लैंड दौरे पर गई ऑस्ट्रेलिया टीम को मेजबान के साथ 5 वनडे और 1 T20 मैच खेलना है और ऑस्ट्रेलियाई टीम 13 जून से अपने अभियान का आगाज करेगी। तो वहीं वार्नर मैदान के बाहर एक चैनल के लिए कमेंट्री करते हुए दिखाई देंगे। इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीतने के बाद भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री ने ट्वीट किया है कि ये जीत स्टेडियम में मैच देखने और घर से हौसला बढ़ाने वाले दर्शकों को समर्पित है। मैच में एक्टिव अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर्स की सूची में लियोनेल मेस्सी के रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले छेत्री ने कहा कि हम फिर से एकत्रित होंगे क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
एक बार फिर आपको ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात का ताज़ा हाल बता दें। अभी योनहाप न्यूज़ एजेंसी जो कि दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी है उसने खबर दी है कि किम जोंग उन ने कहा है कि हम सभी मुश्किलों को पार करके यहां तक पहुंचे हैं। ये दोनों नेता अभी आपस में बात कर रहे हैं। 2 दुभाषीय वहां मौजूद हैं और 45 मिनट से 1 घंटे के बीच तक ये मुलाकात चल सकती है। इसके बाद उनके वरिष्ठ सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के बाकी सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए भूमिका राय से।
सिंगापुर में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कल दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया। एक लंबे समय से बीमार चल रहे पूर्व प्रधानमंत्री को रूटीन चेकअप के लिए भर्ती कराया गया है। अप्रवासियों से भरे एक जहाज को इटली और माल्टा में प्रवेश न दिए जाने के बाद स्पेन उन्हें अपने यहाँ जगह देने को तैयार हो गया है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में फर्जी ईमेल भेजकर पैसे लूटने के आरोप में 5 देशों से 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए एक आत्मघाती हमले में 12 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों बुरी तरह से घायल हो गए हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया राजेश चौहान ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया विकास त्रिवेदी ने। तो अब कुलदीप मिश्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।